ओम शांति, ओम शांति। सत गुरुवार की गुड मॉर्निंग। बाबा क्यों आए हैं, ये प्रश्न कितना कॉमन प्रश्न है और इसके कितने उत्तर हैं। और हर मुरली में बाबा भिन्न भिन्न उत्तर देते हैं, बाबा क्यों आए हैं। आज बाबा ने सुंदर जवाब दिया है, मैं क्यों आया हूँ। मैं आया हूँ बच्चों का श्रृंगार करने। और कैसे श्रृंगार करते हैं, तीनों रूपों से श्रृंगार करते हैं। वैसे तो हम कहते हैं ज्ञान गुण शक्तियाँ ये हमारे खजाने हैं जो बाबा हमें देते हैं। और आज बाबा ने कहा है ज्ञान का श्रृंगार टीचर रूप में करते हैं, फिर गुणों का श्रृंगार बाप के रूप में करते हैं और शक्तियों का श्रृंगार सतगुरु रूप में करते हैं। और किसका श्रृंगार करते हैं, कोई शरीर का श्रृंगार की बात नहीं है, आत्मा का श्रृंगार करते हैं। आत्मा में भी बुद्धि का श्रृंगार करते हैं, क्योंकि बुद्धि इस समय तुच्छ बुद्धि हो गई है ना। कोई कुरूप होता है तो उसको सुंदर बनाने लिए उसका कितनी वैरायटी रूप से श्रृंगार करते हैं, तो आत्मा भी तुच्छ बुद्धि बन गई है। इसलिए श्रृंगार की बहुत जरूरत है। और इस श्रृंगार करके क्या करेंगे बाबा, हमें पियर और ससुर घर ले जाएंगे, दोनों घर ले जाएंगे। पियर घर कौन सा है, परमधाम, और ससुर घर कौन सा है, सतयुग। तो श्रृंगार क्यों किया जाता है, कन्या का श्रृंगार किया जाता है ताकि वो श्रृंगार करके पियर घर से ससुर घर जाए। तो पियर घर तो हमारा परमधाम है और यहाँ तो हम पराए राज्य में बैठे हैं, तो पराए राम हमारी बुद्धि तुच्छ बन गई है। वह आकर के कैसे स्वच्छ बनाते हैं, ज्ञान गुण और शक्तियों से श्रृंगार करते हैं और फिर पियर घर और ससुर घर ले जाते हैं। हाँ, कितना सुंदर रूप से बाबा ने ये बातें सुनाई है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 29/5/2025 है। मीठे बच्चे, तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो। भटक रहे थे ना भक्ति मार्ग में रावण, कल बाबा ने कहा ना रावण ने क्या किया, भटकाया और क्या किया, हाँ बुद्धि को कैसा पते तुच्छ बना दिया, तो भटकते ही रहे। तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो। तुमने बाप द्वारा रचयिता और रचना को जान लिया है तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। आज बाबा ने कितनी बार कहा रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। कुमारी जब श्रृंगार करती है उसको पता है मुझे ससुराल घर जाना है, तो कितना श्रृंगार करते समय रोमांच खड़े हो जाते खुशी के मारे कि मैं अपने कैसे पियर से ससुर घर जाती हूँ। लेकिन बाबा तो पियर घर भी ले जा रहे हैं, ससुर घर भी, ये तो पराए राज्य में हम बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो। तुमने बाप द्वारा रचयिता और रचना को जान लिया है तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। प्रश्न है, इस समय बाप तुम बच्चों का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं, बताए ना क्यों कर रहे हैं। उत्तर, क्योंकि अभी हमें सज धज कर श्रृंगार किया करके सज धज जाते ना, तो क्योंकि अभी हमें सज धज कर विष्णुपुरी ससुर घर में जाना है। हम इस ज्ञान से सजकर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। अभी संगम युग पर है बाबा टीचर के रूप में, और टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं पियर घर से ससुर घर ले जाने के लिए, पढ़ा भी रहे हैं, गुणों से श्रृंगार भी कर रहे हैं और पवित्र बनाकर हमें शक्तियां भी दे रहे हैं ताकि आत्मा सहज उड़ सके पियर घर और ससुर घर। गीत है, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन, हम कौन है? स्वीट चिल्ड्रन बाबा के। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों ने गीत सुना, स्वीट चिल्ड्रन और सिक्की लदे चिल्ड्रन ने गीत सुना। तुम बच्चे ही जानते हो कि आधा कल्प जिस माशूक को याद किया है आखरीन वो मिले हैं। दुनिया ये नहीं जानती कि हम कोई आधा कल्प भक्ति करते हैं, किस लिए? माशूक को मिलने लिए। तो आधा कल्प भक्ति करते हैं, माशूक बाप को पुकारते हैं, हम आशिक हैं, वो माशूक है, ये भी कोई नहीं जानते। हम आत्मा आशिक है, वो माशूक है, ये भी कोई नहीं जानते। तो बाप कहते हैं रावण ने तुमको बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है, खास भारतवासियों को। तुम देवी देवता थे ये भी भूल गए हो, तो तुच्छ बुद्धि हुए ना। क्या थे? देवी देवता थे, भूल गए हो तो तुच्छ बुद्धि हुए ना। अपने धर्म को भूल जाना ये है तुच्छ बुद्धि का काम, है ना? कोई अपने धर्म कोई भूल जाए तो क्या कहेंगे उसको? तुच्छ बुद्धि। अभी ये सिर्फ तुम ही जानते हो, हम भारतवासी स्वर्गवासी थे, ये भारत स्वर्ग था। थोड़ा ही समय हुआ है, कितना समय हुआ है स्वर्ग को? बाबा कहते थोड़ा ही समय हुआ है, 5000 साल तो बाबा के लिए तो कल की बात है ना, तो थोड़ा ही समय हुआ है। 1250 वर्ष तो सतयुग था, फिर 1250 वर्ष राम राज्य चला, त्रेता युग। उस समय अथाह सुख था, सुख को याद कर भी रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। क्या क्या सोचकर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, आज बाबा ने भिन्न भिन्न रूप से कहा है। तो सुख को याद कर भी रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर ये सब पास हो गए। सतयुग की आयु कितनी थी ये भी कोई नहीं जानते। लाखों वर्ष कैसे हो सकती है? सोचने की बात है, लाखों वर्ष कैसे हो सकती है। अभी बाप आकर समझाते हैं तुमको माया ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया है। दुनिया में कोई अपने को तुच्छ बुद्धि समझते नहीं है। तुम जानते हो हम कल तुच्छ बुद्धि थे, कल थे बाबा का बनने से पहले, कल तुच्छ बुद्धि थे। अभी बाबा ने इतनी बुद्धि दी है जो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को हम जान गए हैं। कितनी स्वच्छ बुद्धि बना दी बाबा ने जो हम सबको जान गए। कल बाबा ने कहा ना तीसरा नेत्र देते, तो इस तीसरे नेत्र से सब कुछ जान जाते हैं। कल नहीं जानते थे, आज जाना है। जितना जितना जानते जाते हैं क्या होता है? जितना जितना जानते जाते हैं उतना खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे, और फिर उनका मनन करते चिंतन करते तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। हम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं, है ना? गीत भी है, कहाँ तेरी मंजिल, कहाँ है ठिकाना, मुसाफिर बता दे कहाँ तुझको जाना। तो अभी तो हमको पहले बाबा, हम भटक रहे थे तो बाबा मंजिल पर भी ले जाते और ठिकाने पर भी ले जाते। हम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं, बरोबर बाबा ने हमको स्वर्ग की राजाई दी थी, फिर हमने गंवा दी। अभी पतित बन पड़े हैं, सतयुग को पतित नहीं कहेंगे, वो है ही पावन दुनिया। मनुष्य कहते हैं हे पतित पावन आओ, रावण राज्य में पावन ऊंच कोई हो ही नहीं सकता। कोई भी यहाँ न पावन है न ऊंच है, कोई नहीं सकता। बाबा कहते ऊंच से ऊंच बाप के बच्चे बने तो ऊंच भी बने। तुम बाप को, तुम बच्चों ने बाप को जाना है, सो भी सबने एक जैसा नहीं जाना है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो अपनी दिल से सवेरे सवेरे उठकर पूछो, जैसे आंख खुलती है सवेरे सवेरे, तो पहले ही अपने आप से पूछो क्या, हाँ क्या पूछो, अमृत वेले का समय तो बहुत अच्छा है, तो सवेरे अमृत वेले बैठकर ये ख्याल करो, पूछो अपने आप से क्या ख्याल करो, बाबा हमारा बाप भी है टीचर भी है। ओ गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा तो कहते ही हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, जिसको याद करते हैं हे भगवान कहकर, अभी वो हमको मिला है अमृत वेले। ये सोचो, जिस भगवान को हमने पुकारा याद किया हे भगवान कहा, वो अब हमको मिला है। हम फिर से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, वो है लौकिक बाप, ये है बेहद का बाप। तुम्हारा लौकिक बाप भी उस बेहद के बाप को याद करता है। सब लौकिक बाप जो भी है वो भी सब बेहद के पारलौकिक बाप को याद करते हैं। तो वो बापों का बाप, पतियों का पति वो हो गया, पति भी उसको याद करता है, तो वो पतियों का पति भी हो गया, बापों का बाप भी हो गया। ये भी भारतवासी ही कहते हैं, भारत में ये रस्म है कि पति तुम्हारा ईश्वर है, पति तुम्हारा गुरु है। तो परंतु वो पति भी तो उस पतियों के पति को याद करता है, बापों के बाप को याद करता है। ये तो ये भी भारतवासी कहते, क्योंकि अभी मैं शिव बाबा कहते, मैं बापों का बाप पतियों का पति बनता हूँ, बापों का बाप और पतियों का पति बनता हूँ, पतियों का पति बनता हूँ। तो देखो वो याद आता है, यहाँ ओम शांति भवन में एक माता आई बाबा के सामने, तो प्रश्न करते थे बाबा जवाब देते थे, तो बाबा को कहती है, बाबा मेरी पति के बुद्धि का ताला खोलो, मेरे पति की बुद्धि का ताला खोलो। तो बाबा ने मुस्कुराया और उसको अच्छी दृष्टि दी। फिर बाबा ने क्या कहा, देखो पतियों के पति के सामने बैठी हो, मेरे पति की बुद्धि का ताला खोलो। अब पतियों का पति सामने बैठा है और उस समय पति को याद कर रही है। तो बाबा ने उनको बहुत सुंदर जवाब दिया, पतियों के पति के सामने बैठी हो उसको याद करो तो पति की बुद्धि का ताला खुल जाएगा। ये भी छोटी सी बात है, लेकिन मेरी पति की बुद्धि का ताला खोलो। तो बाबा कहते हैं, ये भी भारतवासी कहते हैं, क्योंकि अभी मैं बापों का बाप हूँ, पतियों का पति बनता हूँ, अभी मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, तुम बच्चे बने हो, बाबा बाबा कहते रहते हो, अभी फिर तुमको विष्णुपुरी ससुर घर ले जाता हूँ, ये है तुम्हारे बाप का घर। बाप का घर है संगम युग, बाप का घर है मधुबन, बाप का घर है कलयुग, तो बाप का घर नहीं है ना, ये तो रावण का घर है। ये है तुम्हारे बाप का घर, फिर ससुर घर जाएंगे। बच्चे जानते हैं हमको बहुत अच्छा श्रृंगारा जाता है, रोज सुबह सुबह बाबा हमारा श्रृंगार करते हैं, बहुत अच्छा श्रृंगारा जाता है। अभी तुम पियर घर में हो ना, तुमको पढ़ाया भी जाता है, पढ़ाई भी सुबह सुबह होती है, तुमको पढ़ाया भी जाता है, तुम इस ज्ञान से सज कर विश्व के महाराजा महारानी बनते हो। तुम यहाँ आए ही हो विश्व का मालिक बनने, तुम भारतवासी ही विश्व के मालिक थे जबकि सतयुग था। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे क्या कि हम विश्व के मालिक हैं? अभी नहीं है। अभी तुम जानते हो भारत के मालिक कलयुगी हैं। हम भारत के मालिक तो कहेंगे ना, नागरिक हैं भारत के। तो बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो भारत के मालिक कलयुगी हैं। हम तो कलयुगी भी नहीं है, हम तो संगम युगी हैं। फिर हम सतयुग में सारे विश्व के मालिक बनेंगे। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। जानते हो विश्व की बादशाही देने वाला बाप आया है। अभी संगम युग पर वो आए हैं। ज्ञान दाता भी एक ही बाप है। बाप के सिवाय किसी भी मनुष्य को ज्ञान दाता नहीं कहेंगे। केवल एक परमात्मा ही है जिनको ज्ञान दाता कहेंगे, क्योंकि बाप के पास ऐसा ज्ञान है जिससे सारे विश्व की सदगति होती है। ज्ञान से सदगति होती है ना, तो बाबा के पास ही वो ज्ञान है जिससे सारे विश्व की सदगति होती है। तत्वों सहित सब की सदगति हो जाती है। मनुष्यों के पास सदगति का ज्ञान है नहीं, सदगति का ज्ञान नहीं है। इस समय सारी दुनिया तत्वों सहित तमो प्रधान है। दुनिया में ये तत्व भी आ गए, सब तत्वों सहित ये सारी दुनिया तमो प्रधान है। इसमें रहने वाले भी तमो प्रधान है। तो दुनिया में रहने वाले जो होंगे वो भी तमो प्रधान, दुनिया तमो प्रधान, सब कुछ तमो प्रधान। इसमें रहने वाले भी तमो प्रधान है। नई दुनिया है सतयुग, उसमें रहने वाले भी देवता थे। फिर रावण ने जीत लिया। अब फिर बाप आया हुआ है। तुम बच्चे कहते हो हम जाते हैं बाप दादा के पास। मधुबन में क्यों आते हैं? बाप दादा के पास। बाप हमको दादा द्वारा स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं। बाप तो स्वर्ग की बादशाही देंगे, और क्या देंगे? सबसे ऊंची चीज तो वही है ना, वो तो भगवान ही दे सकते। लौकिक बाप भी चलो कुछ देगा, गाड़ी देगा, मोटर देगा, चलो कुछ भी देगा, लेकिन स्वर्ग की बादशाही तो कोई भी लौकिक पिता नहीं दे सकता, ये तो बाप ही दे सकता। शिव बाबा, बाप तो स्वर्ग की बादशाही देंगे, और क्या देंगे? हाँ, और इनसे बढ़िया चीज तो कोई हो ही नहीं सकती। तुम बच्चों की बुद्धि में ये तो आना चाहिए ना कि बाप हमको सबसे बढ़िया चीज दे रहे हैं, स्वर्ग की बादशाही। परंतु फिर परंतु बाबा कहते हैं माया भुला देती है, ये भूल जाते हैं कि बाबा हमको विश्व की बादशाही दे रहे हैं, स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं। स्थाई खुशी रहने नहीं देती है माया। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। पहचानना तो एक ही बार चाहिए ना, कितनी देर लगती है पहचानने में? एक सेकंड। तो पहचानना तो एक ही बार चाहिए ना, हाँ बार बार थोड़ी पहचानने लगती लगेंगे। सभी आत्माओं का बाप एक है, वो सभी आत्माओं का बाप आया हुआ है। परंतु सब तो मिल नहीं सकेंगे, साकार बाबा से भी सब कहाँ मिले, अव्यक्त बाबा से भी अभी जो नए नए आए हैं वो कहाँ सब मिले। परंतु सब तो मिल भी नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल है। बाप तो पढ़ाने आते हैं, तुम भी सब टीचर्स हो। कहा जाता है ना गीता पाठशाला, हमारी माताएं भी बहुत अच्छी गीता पाठशाला चलाती है, बहुत अच्छी टीचर्स बन जाती है माताएं भी। कहा जाता है ना गीता पाठशाला, ये अक्षर भी कॉमन है। अभी तो कई सेंटरों पर हमने देखा इतनी गीता पाठशालाएं बनती गई है। अब वो कहते टीचर भेजो, टीचर भेजो हमारी गीता पाठशाला में मुरली सुनाने आए। तो कई टीचर्स ने माताओं को तैयार किया, वो माताएं टीचर बन के पाठशालाओं में जाती है। जो सेंटर पर बहने रहती है वो कहाँ सब जगह जाएगी, हाँ यहाँ भी बैठी होंगी, है कोई माताएं जो टीचर बन के पाठशालाओं में पढ़ा मुरली सुनाती, देखो कितना हाथ उठा रहे, हाँ देखो कितनी बहने हाथ उठा रही है, भाई इनके लिए ताली बजाओ, बिल्कुल टीचर बन गए तो। और इतनी धारणा पक्की जो बात मत पूछो, तभी तो टीचर उनको बड़ी बहन उनको भेजती है टीचर के रूप में कि गीता पाठशालाओं में आप मुरली सुनाओ। तो बाबा कहते हैं तुम भी सब टीचर्स हो, कहा जाता है ना गीता पाठशाला, ये अक्षर भी कॉमन है। कहते हैं कृष्ण ने गीता सुनाई, अब ये कृष्ण की तो पाठशाला है नहीं, कृष्ण की पाठशाला ये नहीं है, कृष्ण की आत्मा भी पढ़ रही है, ब्रह्मा बाबा की आत्मा साकार में, तो बाबा कहेंगे ना कृष्ण की आत्मा भी पढ़ रही है। सतयुग में कोई गीता पाठशाला में पढ़ते पढ़ाते हैं क्या? वहां तो गीता कोई नहीं पढ़ेगा और पढ़ाएगा सतयुग में। कृष्ण तो हुआ ही है सतयुग में, फिर 84 जन्म लेते हैं, एक भी शरीर दूसरे से मिल न सके। 84 जन्म लेंगे तो एक भी शरीर दूसरे पहले वाले शरीर से मिल न सके। ड्रामा प्लान अनुसार हर एक आत्मा में अपना 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, एक सेकंड न मिले दूसरे से। सोचो कितनी सूक्ष्मता है, एक सेकंड न मिले दूसरे से। 5000 वर्ष तुम पाठ बजाते आए हो, एक सेकंड का पाठ दूसरे सेकंड से मिल न सके, कितनी समझ की बात है, ड्रामा है ना। पाठ रिपीट होता जाता है, बाकी ये शास्त्र सभी हैं भक्ति मार्ग के, आधा कल्प भक्ति चलती है फिर सर्व को सदगति मैं ही आकर के देता हूं। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले राज्य करते थे, सदगति में थे, दुख का नाम नहीं था, नाम निशान दुख का था ही नहीं। अभी तो दुख ही दुख है, इसको दुख धाम कहा जाता है, शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम, ये तीन धाम है। भारतवासियों को ही आकर सुख धाम का रास्ता बताता हूँ, कल्प कल्प फिर हमको आना पड़ता है। शिव बाबा कहते कल्प कल्प हमको फिर आना पड़ता है, अनेक बार आया हूँ, आता रहूंगा, अनेक बार आया हूँ, अभी आया हूँ फिर आता रहूंगा, इसकी एंड हो ही नहीं सकती है। कितनी बार आया है, कितनी बार और आएगा, बाबा कहते एंड है ही नहीं, इसका अंत नहीं है। तुम चक्र लगाकर दुख धाम से आते हो, फिर मुझे आना पड़ता है। चक्र लगाकर सुख धाम से दुख धाम में आते हो, फिर दुख धाम के अंत में मुझे आना पड़ता है। अभी तुमको स्मृति आई है 84 जन्मों के चक्र की, अभी बाप को रचयिता कहा जाता है, ऐसे नहीं कि ड्रामा का कोई रचयिता है। हाँ बाबा को रचयिता कहते हैं, लेकिन बाबा कोई ड्रामा का रचयिता नहीं है, क्योंकि ड्रामा भी अनादि अविनाशी है और बाप भी अनादि अविनाशी है। हाँ, ऐसा बाप जिसका कोई बाप नहीं, तो ड्रामा का भी कोई रचयिता नहीं है। ऐसे नहीं कि ड्रामा का कोई रचयिता है, रचयिता अर्थात इस समय सतयुग को आकर रचते हैं। क्यों बाबा को रचयिता कहते हैं? क्योंकि सतयुग को आकर रचते हैं। सतयुग में जिनों का राज्य था फिर गंवाया, उन्हों को ही बैठ पढ़ाता हूँ, तो बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, तुम मेरे बच्चे हो ना, याद दिलाते हैं बाबा। कई बच्चे भूल जाते हैं हम किसके बच्चे हैं, लौकिक के पीछे रहते हैं, लेकिन हम किसके बच्चे हैं बाबा याद दिला रहे, तो मेरे बच्चे हो ना, तुमको कोई साधु संत आदि नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाला एक बाप है जिसको सब याद करते हैं। याद जिसको करते हैं जरूर वो कभी आएंगे भी ना, ऐसे ही थोड़े याद करते हैं, जरूर वो कभी आता भी तो होगा ना, ऐसे याद किया और वो आए नहीं तो क्या फायदा। तो याद जिसको करते जरूर कभी आएंगे भी ना, ये भी किसको समझ नहीं है कि याद क्यों करते हैं। अब याद तो करते हैं, कुछ ना कुछ मांगते हैं भगवान से, लेकिन वो भगवान कभी आएगा भी ना, तो परंतु ये नहीं समझते। ये भी किसको समझ नहीं है कि याद क्यों करते हैं। तो जरूर पतित पावन बाप आते हैं, पतित पावन सीताराम कहते तो पतित पावन आते हैं बाप। क्राइस्ट को ऐसे नहीं कहेंगे, हाँ क्राइस्ट के लिए ऐसे नहीं कहेंगे पतित पावन आकर के हम पतितों को पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहेंगे। तो क्राइस्ट के को ऐसे नहीं कहेंगे कि फिर से आओ, वो तो समझते हैं लीन हो गया क्राइस्ट, तो गॉड के पास चला गया, लीन हो गया, फिर आने की बात ही नहीं है। कई समझते हैं कि क्राइस्ट फिर आने वाला है, तो फिर आने की बात ही नहीं। याद फिर भी पतित पावन को करते हैं, भले क्राइस्ट को याद करेंगे लेकिन वो गॉड द फादर, ये तो किसको कहते हैं, वो फादर गॉड को कहते हैं। याद फिर भी पतित पावन को करते हैं, हम आत्माओं को फिर से आकर वर्षा दो, इसलिए याद करते हैं। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है, बाबा आया हुआ है ना, सभी को स्मृति, कोई भूल तो नहीं गए हैं, ये बाबा आया हुआ है, वो ही पढ़ा रहा है, बाबा आया हुआ है, नई दुनिया की स्थापना करेंगे। फिर वो फिर भी अपने समय पर रजो तमो में ही आएंगे, और धर्म पिताएं जो आएंगे वो तो सब रजो तमो में आएंगे, बाप तो इस समय आते हैं अंत में, वो फिर भी अपने समय पर रजो तमो में ही आएंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो हम मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं, एक बाप ही है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं। कोई किसी को पढ़ाकर विश्व का मालिक नहीं बना सकता, खुद नहीं बनते हैं। ऐसा कोई होगा जो खुद बने नहीं और दूसरों को विश्व का मालिक बनाए, खुद नहीं बनते हैं। इसलिए शिव बाबा को क्या कहते हैं, उनकी महिमा में क्या कहते हैं, खुद नहीं बनते, खुद नहीं करते, सब बच्चों को देते हैं, तो बाबा का कौन सा टाइटल है। इसलिए बाबा कहते, इसीलिए उनको कहा जाता है निष्काम सेवाधारी, अपने प्रति कोई कामना नहीं है। दुनिया में लौकिक पिता होगा, टीचर होगा, गुरु होगा, उनको कुछ न कुछ कामना होगी, पर बाबा को अपने लिए कोई कामना नहीं, बाबा को कुछ नहीं चाहिए अपने लिए। बाबा ने उस दिन भी कहा, न मैं खाता हूँ न पीता हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, खाने पीने के लिए ही मनुष्य को चाहिए ना। बच्चे बड़े हो गए तो माँ बाप की पालना बच्चों को करनी है, तो कहेंगे कि बच्चे हमारी पालना करें। अब बाबा तो खाता पीता है ही नहीं, इसलिए उनको कुछ भी नहीं चाहिए। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा को कोई भी आश नहीं है, खुद नहीं बनते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है निष्काम सेवाधारी। मनुष्य कहते हैं हम फल की आश नहीं रखते हैं, कई अपने आप को बहुत निष्काम धारी सा सेवाधारी समझते, कहते हमको कोई आश नहीं, बस हम देते हैं, सेवा ही करते हैं, हमको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मनुष्य कहते हम फल की आश नहीं रखते हैं, निष्काम सेवा करते हैं, परंतु ऐसे होता नहीं। क्यों नहीं होता है, कई कहते हैं हमको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं तो देता ही रहता हूँ, बाप भगवान हमको देता है, लेकिन फिर भी बाबा कहते आश रहती है। चलो आश न भी रहे तो भी उनको निष्काम सेवादारी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि मिलता है जरूर, ऐसे नहीं कि नहीं मिलता है, भले वो आशा न भी रखे, हमने दान पुण्य किया, नेकी कर दरिया में डाल, मैं किसी को बताता नहीं हूँ, गुप्त रखता हूँ, पर मिलता जरूर है, मिलता जरूर है। अगले जन्म में बाबा कहते हैं ना, वो धनवान के घर में पैदा होगा, तो पिछले जन्म का दान पुण्य जो किया उसी से ही तो वो अगले जन्म में धनवान के घर में जन्म लेता है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य कहते हैं हम फल की आश नहीं रखते हैं, निष्काम सेवा करते हैं, परंतु ऐसे होता नहीं। जो भी जो कर्म करेगा उसका फल जरूर उसको मिलेगा। जैसे संस्कार ले जाते हैं उस अनुसार जन्म मिलता है, कर्म का फल अवश्य मिलता है। सन्यासी भी पुनर्जन्म तो गृहस्थियों के पास लेकर फिर संस्कार अनुसार सन्यास धर्म में चले जाते हैं। जैसे बाबा लड़ाई वालों का भी मिसाल देते हैं, लड़ाई वालों का मिसाल देते हैं ना, लड़ाई के मैदान में उसने शरीर छोड़ा, लड़ते लड़ते शरीर छोड़ा, अंदर में जोश था और उसको गोली लग गई, चलो वहाँ शरीर छोड़ा, लेकिन वो संस्कार ले गया। तो जब छोटा बच्चा बनेगा तो मम्मी को क्या कहेगा, मम्मी मुझे बंदूक चाहिए, बंदूक चाहिए, बंदूक चाहिए, क्योंकि उसमें लड़ाई के संस्कार है, तो बंदूक ही लेगा, उसके खिलौने ही वो होंगे बंदूक, तो क्योंकि संस्कार है। तो बाबा कहते हैं, जैसे बाबा लड़ाई वालों का भी मिसाल देते हैं, कहते हैं गीता में लिखा हुआ है जो युद्ध के मैदान में मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा, परंतु स्वर्ग का भी तो समय चाहिए ना, ऐसे थोड़ी है कि स्वर्ग में अभी चला जाएगा क्योंकि युद्ध में मरा, अभी तो पुनर्जन्म लेगा फिर लड़ाई करेगा बड़ा हो करके, परंतु स्वर्ग में कौन सी लड़ाई से जाएगा, संगम युग पर माया से लड़ाई से जाएगा स्वर्ग में। तो बाबा कहते हैं, जैसे बाबा लड़ाई वालों का मिसाल देते हैं, कहते हैं गीता में लिखा हुआ है कि जो युद्ध के मैदान में मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा। अर्जुन को कहा ना, हे अर्जुन तुम युद्ध करो, तो अगर तुम मर भी जाओगे इस युद्ध में तुम स्वर्ग में जाओगे। तो कई समझते कि लड़ाई के मैदान में मरने से स्वर्ग में जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, परंतु स्वर्ग का भी समय चाहिए ना, स्वर्ग तो लाखों वर्ष पहले का कह देते, सत्युग को बहुत दूर ले गए। अब तुम जानते हो बाप क्या समझाते हैं और गीता में क्या लिख दिया है। कहते हैं भगवान उवाच, मैं सर्वव्यापी हूं। बाप कहते हैं मैं अपने को ऐसे गाली कैसे दूंगा कि मैं सर्वव्यापी हूं, कुत्ते बिल्ली सब में हूं, मैं कैसे अपने लिए गाली दूंगा, मुझे तो ज्ञान सागर कहते हो ना। बाबा ने एक मुरली में कहा था ना, मैंने तो कभी कहा ही नहीं है मैं सर्वव्यापी हूं, ये कैसे लिख दिया है गीता में, क्योंकि गीता में ही सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी नहीं है, मैं सब नदियों में गंगा नदी हूं, मैं सब पहाड़ों में हिमालय हूं, तो जो सबसे ऊंचा है वही अपने आप को रखा, तो सबसे ऊंचा अपने आप को रखा तो सर्वव्यापी कैसे हुआ, सर्वव्यापी बना सब एक जैसा हो गया। तो बाबा कहते हैं मुझे तो ज्ञान का सागर कहते हो ना, मैं अपने को फिर ये कैसे कहूंगा कि मैं कुत्ते बिल्ली में हूं, कितना झूठ है, ज्ञान तो कोई में है नहीं, सन्यासियों आदि का मान कितना है क्योंकि पवित्र है, सत्युग में गुरु तो कोई होता नहीं है, यहाँ तो स्त्री को भी कहेंगे तुम्हारा पति तुम्हारा गुरु ईश्वर है, दूसरा कोई गुरु नहीं करना। अब वो तो तब समझाया जाता था, कब समझाया जाता था कि तुम्हारी बुद्धि और कहीं नहीं जानी चाहिए, बस पति में ही तुम्हारी बुद्धि जानी चाहिए, वही तुम्हारा सब कुछ है, गुरु है ईश्वर है, वो तो तब समझाया जाता था जब भक्ति भी सतो प्रधान थी। सत्युग में तो गुरु था ही नहीं, भक्ति की शुरुआत में भी गुरु होते नहीं, पति ही सब कुछ है। भक्ति की शुरुआत में भी बाबा कहते हैं गुरु होते नहीं, पति ही सब कुछ है, गुरु नहीं करते। द्वापर में भी कोई शुरू में थोड़ी कोई ऐसे गुरु होंगे जो करेंगे, गुरु नहीं करते। इन सब बातों को अभी तुम समझते हो। कई मनुष्य तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम सुनकर ही डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? क्योंकि समझते हैं ये भाई बहन बनाते हैं। अरे बाबा ने समझाया, अरे प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनना तो अच्छा है ना, भाई बहन क्यों कहते, क्योंकि दोनों ही ब्रह्मा के बच्चे बन जाते हैं, दोनों का एक ही पिता हो जाता है, दोनों एक से ही एडॉप्ट होते हैं। तो बाबा कहते प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनना तो अच्छा है ना, ब्रह्मा कुमार कुमारी ही स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, अगर बनेंगे बीके ब्रह्मा कुमार कुमार तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा, तो ये तो अच्छा है ना। अभी तुम ले रहे हो, तुम बीके बने हो, दोनों कहते हैं हम भाई बहन हैं। शरीर का भान विकार की बांस निकल जाती है, विकार की भी बांस है हाँ? बाबा कहते वो निकल जाती है। हम एक बाप के बच्चे भाई बहन विकार में कैसे जा सकते हैं? ये बाबा कहते हैं युक्ति बहुत अच्छी है पवित्र रहने की। ये तो महान पाप है, वैसे कभी भी दुनिया में भी हाँ ये ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि भाई और बहन आपस में शादी करें। अगर मान लो कोई करता भी है तो माँ बाप तो बिल्कुल इसको स्वीकार नहीं करते। हाँ बहन से तुम शादी कर गया, बहन कैसे कैसे तुम वो तुम्हारी पत्नी बनेगी? बहन माना वो तो पवित्र संबंध है। तो बाबा कहते हैं हम एक बाप के बच्चे भाई बहन विकार में कैसे जा सकते हैं? ये तो महान पाप है। ये पवित्र रहने की युक्ति ड्रामा में है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। अब तुम्हें इस छीछी दुनिया की रस्म रिवाज को छोड़कर इस दुनिया को ही भूल जाना है। हम बेहद के सन्यासी न हद के सन्यासी तो घर बार छोड़ देते हैं, और हम बेहद के सन्यासी घर बार नहीं छोड़ते पर विकारों को छोड़ते हैं, क्योंकि ये छीछी है ना विकार। तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हें छीछी दुनिया की रस्म रिवाज को छोड़कर इस दुनिया को ही भूल जाना है। तुम स्वर्ग के मालिक थे, फिर रावण ने कितना छीछी बनाया है। ये भी बाबा ने समझाया है। कोई कहे हम कैसे माने कि हमने 84 जन्म लिए हैं? कैसे माने कि हमने 84 जन्म लिए हैं? 84 जन्म लिए हैं ये तो हम अच्छा कहते हैं ना, हम कोई खराब बात थोड़ी कहते हैं। 84 जन्म लिए, 84 जन्म लिया है माना देवता थे हम, तो अच्छी बात है ना ये कहना कि हम 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म नहीं लिया तो ठहरेगा ही नहीं, अगर नहीं लिया होगा तो यहाँ ठहरेगा ही नहीं, वही ठहरेगा यहाँ जिसने 84 जन्म लिए हो। 84 जन्म नहीं लिया तो ठहरेगा ही नहीं, समझा जाता है ये देवी देवता धर्म का ही नहीं है। स्वर्ग में तो आ नहीं सकेगा, प्रजा में भी कम पद पा लेगा, चलो आया भी तो त्रेता के अंत में कहीं आ जाएगा, तो बाबा कहते वो भी कम पद पाएगा। प्रजा में भी अच्छा पद कम पद होते है ना, ये बातें कोई शास्त्र में नहीं है। भगवान आकर किंगडम स्थापन करते हैं, राजाई स्थापन करते हैं। श्री कृष्ण तो वैकुंठ का मालिक था, स्थापना तो बाप ही करते हैं। श्री कृष्ण तो वैकुंठ की स्थापना नहीं करते ना, वो तो बाप ही करते हैं। बाप ने ही गीता सुनाई जिससे ये पद पाया, फिर तो पढ़ने पढ़ाने की दरकार ही नहीं है। अभी ही समय है, गीता भगवान सुनाते हैं, ज्ञान देते, पढ़ते और पढ़ाते हैं। सत्युग में न ये ज्ञान पढ़ेंगे न पढ़ाएंगे, फिर पढ़ने पढ़ाने की दरकार ही नहीं है। तुम पढ़कर पद पा लेते हो, फिर थोड़े गीता का ज्ञान पढ़ेंगे सत्युग में। ज्ञान से सदगति मिल गई, जितना पुरुषार्थ उतना ऊंच पद पाएंगे। जितना पुरुषार्थ कल्प पहले किया होगा वो करते रहते हैं, बाबा साक्षी होकर के देखते हैं। तो बाबा साक्षी होकर देखते हैं ना, हर एक का अपना अपना कैसे पुरुषार्थ चल रहा है। तो बाबा कहते हैं साक्षी हो देखना होता है, बाबा को भी साक्षी हो देखना होता है, टीचर को भी देखना है इसने हमको पढ़ाया है। हाँ टीचर को भी देखना है इसने हमको पढ़ाया है, हमको इनसे भी होशियार होना है। अब जिस टीचर ने हमको पढ़ा हमको तो इनसे भी होशियार होना है। टीचर को भी देखना है इसने हमको पढ़ाया है, हमको तो इनसे भी होशियार होना है। मार्जिन बहुत है, टीचर से भी होशियार जा सकते हो। हाँ टीचर से भी, ऐसे नहीं कि टीचर माना वो टीचर हमारे से सदा ही होशियार होगी। हम इतने होशियार हो जाते हैं जो टीचर से भी होशियार हो जाते हैं, है ना। मार्जिन बहुत है, कोशिश करनी है ऊंच से ऊंच बनने की। तो मूल बात है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, ये समझने की बात है ना। ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, मूल बात समझने की क्या है, हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, बाप को याद करना है। हाँ, बाप को याद करना है, क्यों? क्योंकि तब तो पावन बनेंगे, अगर नहीं करेंगे याद तो पावन कैसे बनेंगे। यहाँ तो सब पतित हैं, इसमें दुख ही दुख है। सुख का राज्य कब था ये किसको भी पता नहीं है। दुख में कहते हैं हे भगवान, हे राम, ये दुख क्यों दिया। फिर भगवान कोई दोष देते, हे भगवान इतना दुख क्यों दिया। अब भगवान तो किसको दुख देते नहीं है, ये भी कितना झूठा दोष लगा दिया भगवान पर कि भगवान दुख देते हैं। भगवान तो किसको दुख देते नहीं, ये रावण दुख देते हैं। अभी तुम जानते हो हमारे राज्य में और कोई धर्म नहीं था, फिर बाद में और धर्म आएंगे। तुम भल कहां भी जाओ, ये पढ़ाई तुम्हारे साथ है। मुरली तो हमेशा हर वक्त साथ में होती है ना, तो पढ़ाई तुम्हारे साथ है। मन मना भव का लक्ष्य तो मिला है, बाप को याद करो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, ये भी याद नहीं कर सकते है क्या। हाँ, बाबा कहते हैं ये भी याद नहीं कर सकते हैं क्या। ये याद तो पक्की चाहिए, कौन सी? हाँ, बाप को याद करना है, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है, ये याद पक्की चाहिए। तो फिर अंतमति सो गति हो जाएगी, याद पक्की होगी तो अंतमति सो गति हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ ख्याल करना है। क्या ख्याल करो अमृत वेले सवेरे सवेरे उठ? बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है। अभी बाबा आया है हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने, ये सवेरे सवेरे उठकर सोचो। वो बापों का बाप, पतियों का पति, ऐसे ख्याल करते अपार खुशी का अनुभव करना है। दूसरा, हर एक के पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना है। ऊंच पद की मार्जिन है, जैसे नहीं हम लेट आए हैं हम आगे कैसे जाएंगे, भले लेट आए हैं तो भी आगे जा सकते हैं। बाबा ने कहा ना, टीचर से भी आगे जा सकते हैं। ऊंच पद की मार्जिन है, इसलिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। वरदान, वॉइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन वा तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। वॉइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन वा तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। जिन बच्चों के पास वॉइसलेस की शक्ति है, वॉइसलेस की, वायरलेस हमारी कौन सी है? वॉइसलेस। जिन बच्चों के पास वॉइसलेस की शक्ति है, बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन है, वॉइसलेस की बुद्धि रिफाइन होगी, बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन है, ऐसे भाग्यवान बच्चे सहज ही तीनों लोकों का सैर कर सकते हैं, सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुंचाने के लिए क्या करना है? सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुंचाने के लिए सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए। यही सबसे पावरफुल तार है। इसके बीच में माया इंटरफियर नहीं कर सकती है। तो सूक्ष्म वतन की रौनक का अनुभव करने के लिए स्वयं को वॉइसलेस की शक्ति से संपन्न करो, तो सूक्ष्म वतन की भी रौनक का अनुभव करेंगे। स्लोगन, किसी व्यक्ति, वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षण होना ही क्या है, कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। बाबा मेरा साथी है, बाबा मेरा साथ है, और किसी व्यक्ति और वस्तु या वैभव के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, तो बाबा कहते हैं, स्लोगन है, किसी व्यक्ति, वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। पवित्रता संगम युगी ब्राह्मणों के महान जीवन की महानता है। ब्राह्मणों की महानता क्या है? पवित्रता। पवित्रता संगम युगी ब्राह्मणों के महान जीवन की महानता है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार अर्थात फाउंडेशन पवित्रता है। कितनी बातें बाबा इस अव्यक्त इशारे में सुनाते हैं, पवित्रता क्या क्या है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।